विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ईरान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारतीय उच्चायोग के सदस्यों को लेकर एक और उड़ान के आज पहुंचने की उम्मीद है। इससे पहले उत्तरी ईरान से लाए गए 110 भारतीय छात्र नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार को ईरान से निकासी के लिए 350 से अधिक भारतीयों के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। ईरान और इसराइल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है। इस बीच इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष और तेज हो गया है। दक्षिणी इसराइल के मुख्य अस्पताल पर आज सुबह ईरानी मिसाइल हमले से व्यापक क्षति हुई है और कई लोग घायल हो गए। इसराइल ईरान संघर्ष में परमाणु संयंत्रों और असैन्य बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जा रहा है। सोरोका अस्पताल पर हमला नागरिक चिकित्सा सुविधाओं को निशाना बनाने के उद्देश्य से किया गया है। उधर इसराइल ने ईरान के अराक में खोंडाब परमाणु रिएक्टर पर हमला किया है, जिसमें आंशिक रूप से निर्मित भारी जल रिएक्टर भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया, कनाडा और साइप्रस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। इससे पहले क्रोएशिया में जागरेब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच के साथ व्यापक प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए को शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने की आशा व्यक्त की। श्री मोदी और श्री प्लेंकोविच ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और लचीली भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की जोरदार वकालत की और कहा कि यूरोप हो या फिर एशिया, युद्ध के मैदान में समाधान नहीं खोजा जा सकता।
ईयू के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने में क्रोएशिया का समर्थन और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम दोनों इस बात का समर्थन करते हैं कि यूरोप हो या एशिया, समस्याओं का समाधान रणभूमि से नहीं निकलता, डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही वही एकमात्र रास्ता है।
सरकार देश भर में जनजातीय समुदायों के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की दिशा में काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि उनके मंत्रालय ने पिछले 11 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इस पहल से छात्रों को बड़े पैमाने पर लाभ मिल रहा है।
आज एजुकेशन के स्तर पे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ये 740 है। आप केंद्रीय विद्यालय से भी ज्यादा होने जा रहे हैं। हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय से भी ज्यादा होने जा रहा है। क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, फ्री में आपका रहने के लिए, खाने के लिए, कपड़ा से लेके रीडिंग मटेरियल से लेके सब कुछ दे रहे हैं। जनजाति में ये रियली गेम चेंजर है।
पंचायती राज मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एआई प्लेटफॉर्म भाषिणी के बीच हुए समझौते से न केवल भाषा संबंधी बाधाएं दूर होंगी बल्कि देशभर के राज्यों के बीच भाषाई आधार पर एक रूप लाने के प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा। पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल ने नई दिल्ली में इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर भाषिणी पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे भारत की एकता, अखंडता और भाईचारे को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय महिला तथा बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज नई दिल्ली में जेंडर बजटिंग पोर्टल की शुरूआत की। ये पोर्टल नीति निर्माताओं और हितधारकों के लिए संसाधन केंद्र के रूप में काम करेगा। मौसम विभाग ने गुजरात, केरल, माहे, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में भी आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरकेजे नमणी ने बताया कि कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। झारखंड के कई जिलों में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम बंगाल पहुंच गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के अधिकतर जिलों में छिटपुट वर्षा की संभावना है। उधर मुंबई और उसके आसपास के जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।